ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक संख्या 20।
नेदम यशो रघुपते सूर्यांचया
स्कंद 9 बराबर स्कंद 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या 20। हम क्या बोले थे? 6 बोल दिए थे। 6 बोलते बोलते आदत हो गई है, हम लोग रोज 6 बोलते हैं ना वही।
नेदम यशो रघुपते सूर्यांचया लीला तनो अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बधो जलधि बंधन अस्त्रपुंगई किं तस्य शत्रुघ्नने कृपया सहाया। नेदम यशो रघुपते सूर्यांचयात लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बधो जलधि बंधन मस्त्र पुंगई किं तस्य शत्रुघ्नने कृपया सहाया। नेदम यशो रघुपते सूर्यांचयात लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बदो जलधि बंधन मस्त्र पुंगई किं तस्य शत्रुघ्नने कृपया सहाया। नेदम यशो रघुपते सूर्यांचयात लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बधो जलधि बंधन मस्त्र पुंगई किं तस्य शत्रुघ्नने कृपया सहाया।
पढ़िए।
नेदम यशो रघुपते सूर्यांचयात लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो बधो जलधि बंधन मस्त्र पुंगई किं तस्य शत्रुहनने कृपया सहाया।
और कोई पढ़िए।
नेदम जसो रघुपते सूर्यांचयात लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो वधो जलधि बंधन मस्त्र पुंगई। किं तस्य शत्रुहनने कृपया सहाया।
और कोई पढ़िए।
नेदम जसो रघुपते सूर्यांचयात लीला तनोर अधिक साम्य विमुक्त धामना रक्षो वधो जलधि बंधन मस्त्र पुंगई। किं तस्य शत्रुहनने कृपया सहाया।
और कोई भाग्यशाली जीव। आज हिंदी में है, हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं। जो लोग अंग्रेजी में नहीं पढ़ने का सुयोग प्राप्त करते थे उनके लिए एक अवसर है, पढ़ सकते। हिंदी भाषी भक्त भी पढ़ सकते, अंग्रेजी भी पढ़ते हैं हिंदी वाले। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी नहीं जानते, जानते हैं। माता जी, प्रश्नाचार्य जी पढ़ेंगे? प्रश्न के आचार्य पढ़ना चाहिए ना आपको, पढ़ेंगे। हमारे मंदिर में दो प्रश्नाचार्य हैं, एक आज नहीं आए हैं। एक
तुम जसो रघुपते सूर्यांचयात शब्दार्थ न नहीं इदम ये सब यश जस रघुपते भगवान रामचंद्र का सूर्यांचया देवताओं की स्तुतियों के द्वारा यात लीला तनु जिनका आध्यात्मिक शरीर सदैव विभिन्न लीलाओं में लगा रहता है अधिक शाम में विमुक्त धाम न कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर रक्षा बध राक्षस रावण का बध जलधि बंधनम समुद्र पर पुल बांधना अस्त्र पुंगई धनुष बाण के द्वारा किम क्या तस्य उसका शत्रुहनने शत्रुओं का वध करने में कृपया कपया सारे बंदर सहाया सहायक। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक अर्थ इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया।
न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न उनसे बढ़कर, अतः उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में बानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। अब दोहराएंगे, विभिन्न लीलाओं में सदैव संलग्न दिव्य देहधारी भगवान रामचंद्र का वास्तविक जस इसमें नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह पर बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न उनसे बढ़कर, अतः उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में बानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी। तात्पर्य, वेदों में कहा गया है श्वेता श्वेतर उपनिषद 6:8, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तम समस्या व्यधिकश्च दृश्यते पराश्च शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। भगवान को कुछ भी नहीं करना होता और कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर, क्योंकि उनकी विविध शक्तियों के द्वारा ही सब सहज भाव से व्यवस्थित रूप से घटित होता है। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वे जो कुछ भी करते हैं वो उनकी लीला है। भगवान को किसी के अधीन रहकर कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता, फिर भी वे अपने भक्तों की रक्षा करने अथवा अपने शत्रुओं का वध करने के लिए प्रकट होते हैं। निसंदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शत्रु शक्तिमान हो सकता। निसंदेह भगवान का कोई शत्रु नहीं हो सकता, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन अधिक शक्तिमान हो सकता है। अतएव किसी के उनके शत्रु होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किंतु जब उन्हें लीलाओं का आनंद लेना होता है तो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं, और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत महिमामय कार्यकलाप करते हैं। उनके भक्त उन्हें विविध कार्यों में सदा विजयी होते देखना चाहते हैं, अतएव स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी कभी मनुष्य की भांति कर्म करने के लिए राजी होते हैं और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करते हैं। उनके भक्त उन्हें विविध कार्यों में सदा विजयी होते देखना चाहते हैं, अतएव स्वयं को तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान कभी कभी मनुष्य की भांति कर्म करने के लिए राजी होते हैं और भक्तों को संतुष्ट करने के लिए अद्भुत असाधारण लीलाएं करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम् श्री गुरु दिनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की विजयादशमी महोत्सव की, आज विजयादशमी का महोत्सव है और श्रीपाद मध्वाचार्य का भी आविर्भाव दिवस है। मध्वाचार्य हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। आप सब लोग पढ़े होंगे, मध्वाचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे और ऐसा कहा जाता है कि एक बार उनकी मां ने उनसे प्रार्थना किया था उनके माँ पारिवारिक जीवन में बहुत कठिनाई थी, माधवाचार्य के घर में बहुत आर्थिक समस्या थी और रुपये पैसे की बहुत कमी थी। तो एक बार उनकी माँ ने कहा कि आप कुछ उपाय करो जिससे हम लोग कर्ज से मुक्त हो जाएं। जिस परिवार में कर्ज हो तो वहां सुख शांति नहीं होती है, कर्ज अदा करने के लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। तो माता पिता के कर्ज से ये भी कभी कभी सोचते थे कि हम कैसे माता पिता का कर्ज मुक्त करें। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऋण कर्ता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपंडिता। ऋण कर्ता पिता शत्रु के समान होता है, मान लीजिए पिता बहुत ऋण ले लिया है तो और मर गया तो बच्चे को भरना पड़ता है, और माता च व्यभिचारिणी, और माँ है बच्चों को छोड़ करके दूसरा शादी कर लेती है बच्चे शादी करने लायक है लेकिन वही शादी करने लगती है। तो माता च व्यभिचारिणी, माता भी शत्रु है, और रूपवती भार्या शत्रु। चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्री हो खूब रूपवती हो तो भी शत्रु है। पहले के राजा लोग जिसके पास सुंदर स्त्री होती थी तो ले जाते थे कि पति को मरवा कर ले जाते थे। देवताओं में भी ऐसा है, जैसे इंद्र ने गौतम नारी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे, और बुद्ध अपने गुरु के गुरु पत्नी के ऊपर लुप्त हो गए थे। ते देव समाज में भी ऐसा होता है, तो मानव समाज में अगर ऐसा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऋण कर्ता पिता शत्रु। तो मध्वाचार्य ने एक बार इमली के बहुत सारे बीज ले आए थे और अपने माँ को कहे कि यही इससे आप ऋण चुका सकती हो, और जितने इमली के बीज थे सब स्वर्ण सिक्का में परिवर्तित हो गए। माधवाचार्य बहुत महान थे, हनुमान के अवतार माने जाते हैं। एक बार उनके गांव से एक पर्वत है, पर्वत का क्या नाम मैं तो है, माधवाचार्य जहां रहते थे एक पर्वत पर रहते थे। जैसे हनुमान जी जंगल में रहते थे, भगवान श्री राम के अवतार की प्रतीक्षा में जंगल में रहते थे, जितने बंदर भालू ऋछ ऐसे सब देवता थे। ब्रह्मा जी के आदेश से ये लोग बंदर भालू के रूप में आए थे, क्योंकि नारद जी ने भगवान राम को अभिशाप दिया था। एक बार नारद जी विवाह करने की उनकी इच्छा हो गई, तो विवाह करने की नारद जी की इच्छा हुई जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो भगवान के पास रूप लेने की गए कि भगवान सबसे सुंदर हैं, भगवान के रूप की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो नारद जी भगवान के पास पहुंचे और कहे कि भगवान कहे कि नारद जी आपके आने का क्या प्रयोजन है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो नारद जी कहे कि मैं आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है, एक चीज मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे विश्वास है आप निराश नहीं करेंगे। तो भगवान कहे कि अवश्य आप कहिए, मैं यथाशक्ति प्रयास करूं। भगवान भी कोड में बोले, मैं प्रयास करूंगा, भगवान के लिए क्या प्रयास करना है। जैसे प्रहलाद महाराज कहे नरसिंह देव से कि सारे जीवों को आप ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड को अपने धाम में पहुंचा दीजिए, सारे ब्रह्मांड के जीव दुखी हैं, 84 लाख जोनियों में उनको भ्रमण करना पड़ता है और आपको उनको पालन करना पड़ता है, फिर उनका संहार करना पड़ता है, फिर सृजन करना पड़ता है, तो इतना आप प्रयास क्यों करते हैं। कौन तरो खिल गुरु भगवान प्रयास, अगर आप प्रयास करेंगे तो वैकुंठ में क्यों नहीं जा सकते हैं। नरसिंह देव करके उनको भजन करके जाना चाहिए, भजन साधन करके जाना चाहिए। तो बोले कि भजन साधन करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रयास कर देंगे, कृपा करेंगे, तो बिना प्रयास ही वो भवसागर से पार हो जाएंगे। तो नारद जी के बात पर भगवान कहे कि मैं प्रयास करूंगा, कोई आशा नहीं दिए कि हाँ अवश्य करूंगा, कहे कि जरूर प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। जैसे व्यक्ति को कुछ कोई मांगने जाता है तो देने की इच्छा नहीं होती है तो बोला कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो भगवान कहे कि ठीक है, भगवान कहे कि ये ब्रह्मचारी होकर शादी करना चाहते हैं, प्रचार में फिर बाधा आ जाएगी, प्रचार कौन करेगा, ब्रह्मचारी फ्री होते हैं, उनका उतना जिम्मेवारी नहीं होता है, तो प्रचार में ज्यादा रह सकते हैं, महीनों महीनों दूर मंदिर से रहते हैं, बस में ट्रैवलिंग करते हैं ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारी जब जाते हैं बस में तो 2 महीने के बाद मंदिर में आते हैं, कभी कभी लंबा भी हो जाता है, और गृहस्थ को सोचना पड़ता है, गृहस्थ 2 दिन 4 दिन 10 दिन अगर बाहर जाते हैं तो उनको चिंता होती है अपने परिवार के लिए। तो नारद जी को भगवान ने रूप तो दे दिया लेकिन मुंह जो है बंदर का दे दिया, बंदर का मुखड़ा दे दिया, और स्वयंवर में जहां जयमाल लेकर के स्वयं लक्ष्मी जी ही, भगवान का ही विधान था, वो भगवान ही उस तरह की माया रचे थे कि नारद जी को थोड़ा यह हो गया था कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं, कभी कभी ब्रह्मचारी भक्तों को हम लोग को बहुत होता है कि मैं बहुत बड़ा ब्रह्मचारी हूं, बहुत जितेंद्रिय हूं, हनुमान जी जैसे अतुलित बल धाम हेम शैला भदे हम धनुजबन कृष्णानुम मनोजवम मारुत तुल्य बेगम जितेंद्रियम, हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, मनोजवम मारुत तुल्य बेगम पवन के समान उनका बेग है, जितेंद्रियम। तो ऐसे ब्रह्मचारी लोग से हम जितेंद्रिय हो गए हैं, इंद्रियों को जीत लिए हैं, लेकिन दूसरे क्षण ही जीत लिए जाते हैं। माया इतनी बलवान है कि सबको अपने बस में कर लेती है। तो नारद जी अपनी खूब प्रशंसा कर रहे थे कि मैं शिव जी क्या ब्रह्मचारी हैं, शिव जी भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन काम को जीत नहीं सके, काम को जलाना पड़ा उनको, शिव जी को कमारी कहते हैं, काम को जला दिए थे। तो नारद जी कहे कि आपसे तो ज्यादा मेरी महिमा है कि आप तो काम को जलाए, मैं तो जीत लिया हूं। तो शिव जी कहे कि बहुत अच्छी बात है, आप मुझसे कहे और किसी से मत कहना। तो नारद जी समझे कि हमारा जस से इनको जलन हो रहा है, हमारा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा न हो, ये चाहते हैं कि इसका ज्यादा प्रचार न हो। तो नारद जी के मन में और कौतूहल हो गया कि और हमारा प्रचार हो, तो स्वयं अपने प्रचार में लग गए, अपना प्रचार अपने आप करने लगे, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, अपने पिताजी के पास, कह कि मैं सबसे बड़ा ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मा जी कहे कि बस बस मुझसे कहना और किसी से मत कहना। तो बोले कि ये भी हमारा पिता है, हमको कम से कम थोड़ा ये देता कि हाँ आप बहुत बड़ा काम किए हैं, ये भी हमारे कार्यों की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। तो फिर वहां से विष्णु के पास पहुंच गए, विष्णु के पास भी अपना खूब आत्म प्रशंसा किए, अपने मुंह मियां मिठू बनना। अपनी आत्म स्तुति करने लगे नारद जी। तो भगवान विष्णु ने माया रच दिया कि इनको बहुत अहंकार हो गया है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। तो वहां से नारद जी चले तो एक ऐसा नया सृष्टि देखे, उस साम्राज्य में बहुत सुंदर राजा थे, उनकी एक कन्या थी, वो राज्य में गए तो राजा ने कहा, तो माया का सब विधान था, राजा ने कहा कि आपका आगमन बड़ा अच्छे समय पर हुआ है, और मैंने विचार किया अपने पुत्री का विवाह का स्वयंवर रचा है, हमारे पुत्री का हस्त रेखा देख दीजिए। कभी कभी ब्रह्मचारियों से भी लोग बोलते हैं हमारा हाथ देख दीजिए, ट्रेन में भी लोग आते हैं कि प्रभु जी आप थोड़ा हाथ हमारा देखिए, माताएं भी आती हैं। तो नारद जी के पास प्रस्ताव आया तो नारद जी हाथ देखने लगे, उस स्वयं लक्ष्मी जी ही थी, भगवान ने ऐसा माया का विस्तार किया था। नारद जी हाथ देखने लगे तो देखे कि ये लड़की के साथ जिसका विवाह होगा गुणों में विष्णु के समान हो जाएगा, वो कभी पराजित नहीं होगा, सब प्रकार के स्वर्जों से संपन्न रहेगा। तो नारद जी के मन में लोभ होगा कि मैं क्यों नहीं इससे विवाह कर लूं, इसका इतना गुण देखे उस लड़की का, सोचे कि मैं ही इसे विवाह कर लूं। तो उसके बाद नारद जी भगवान के पास पहुंच गए कि अपना सौंदर्य दे दीजिए। तो नारद जी को अपना सौंदर्य दिए लेकिन मुंह बानर का दे दिए। और जब स्वयंवर में नारद जी घूम रहे थे, चारों तरफ उछल कूद कर रहे थे, और स्वयंवर कन्या के सामने खड़े हो जाते थे कि अब माला डालेगी, लेकिन फिर भी वो लड़की देखती भी नहीं थी नारद जी के तरफ। नारद जी खूब चारों तरफ से घूम करके उसके सामने आ जाते थे। नारद जी को भी बहुत कौतूहल होता था कि इतना सुंदर, इतना प्लास्टिक सर्जरी करा कर आया हूं, फिर भी इतना अपना कायाकल्प करा कर आया हूं, फिर भी ये लड़की देख नहीं रही है। अंततः विष्णु आए और विष्णु को जयमाल डालकर लक्ष्मी जी चली गई। तो नारद जी को शिव जी के दो गण थे, वो कहे कि अपना मुख दर्पण है तो कम से कम पानी में देख लीजिए। तो नारद जी सही में देखे तो मुंह बंदर का था। तो नारद जी को बहुत गुस्सा आया, वाह हमारे साथ इतना इन्होंने धोखा दिया मुझे, मैं भी इनको सबक सिखाऊंगा। नारद जी कहे कि जैसे मैं विरह में, स्त्री के विरह में तड़प रहा हूं, ऐसे आप भी स्त्री के विरह में रोएंगे और यही बंदर जाति आपका सहायता करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी नारद जी के साप के अनुसार देवताओं को कहे कि आप लोग जा करके पृथ्वी में गिरी कानर कंदराओं में बानर के रूप में रहो, भगवान अवतार लेने वाले हैं पृथ्वी के भार दूर करने के लिए। तो भगवान अयोध्या में दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। दशरथ की तीन रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन कोई संतान नहीं थे दशरथ जी के। तो दशरथ जी एक बार उनके मन में बहुत ग्लानि हुई, गृहस्थ जीवन में संतान होना जरूरी है। चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म है। स्त्री किस लिए किया जाता है? पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्रार्थे क्रियते भार्या। तो दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ के घर गए और कहे कि मुझे बहुत चिंता है कि मुझे अभी तक पुत्र नहीं हुआ, आप कुछ उपाय कीजिए। पहले के राजा लोग गुरु से मंत्रणा करते थे या मंत्री से मंत्रणा लेते थे, गुरु ब्राह्मण से कोई भी सलाह मशविरा करते थे। तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी मंत्रणा लिए कि क्या उपाय है। तो वशिष्ठ जी उस समय के महान ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलाए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराए। उस यज्ञ से अग्नि देव प्रकट हुए और यज्ञ से चारु दिए, खीर दिए, और उसी खीर को रानियों में बांटा गया। उसका अर्ध भाग कौशल्या को दिया गया और आधा का फिर दो भाग करके, और उस आधे में भी फिर भाग करके सुमित्रा को दिया गया। सुमित्रा के दो पुत्र हैं, कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तरह से चार पुत्र हुए दशरथ जी के। काल कर्म के अनुसार पढ़े और बड़े हुए। दशरथ जी के आंगने में वो सब खेलते थे, बकैया चलते थे। भगवान राम की सुंदरता का बहुत सुंदर झांकी है, उनके केश बड़े काले घुंघराले उनके मुख पर आते थे, उनके दांत बहुत सुंदर, दांत की ऐसी पक्ति थी मानो कुंद कली दो पल्लों के बीच में खिली है। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, उनके कान में कुंडल उनके गाल पर स्पर्श करते थे मानो बादलों में जैसे बिजली चमकती है। श्याम मुखमंडल में स्वर्णमयी कुंडल उनके गालों से टकराकर एक आभा प्रकट करती थी। उनके दांत ऐसे पक्तिबद्ध थे देखने में ऐसा आकर्षक लगता था कि जो दांत देखता था तो देखते रह जाता था। उनके नख भी मानो चंद्र द्युति, चंद्रमा जैसा, जैसे पूनम का चांद होता है, वैसे उनके नख से भी प्रकाश निकलता था। उनके वक्षस्थल पर मोतियों की माला, बैदुर मणि, मरकत मणि, अनेक प्रकार के मणियों से अलंकृत उनके गले में हार शोभा दे रहा है। उनके कमर प्रदेश में करधनी है, पांव में नूपुर है, अनेक आभरण से सुशोभित हैं। लेकिन राम दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं और काक भुसुंडी, बड़े बड़े देवता लोग आते हैं दशरथ जी के आंगन में। काक भुसुंडी कौवे के रूप में भगवान राम के हाथ से माखन रोटी ले जाते हैं। कौवा का वह कितना भाग्य है जो भगवान के हाथ से रोटी और माखन लेकर खाता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। वो कौन है? काक भुसुंडी जी हैं। शिव जी भी आते हैं, ब्रह्मा आते हैं, अनेक देवता। जैसे दशरथ जी के, नंद महाराज के गोकुल में, नंद भवन में अनेक देवता आते थे प्रतिदिन। बल्कि कंस के कारागार में ही गर्भस्तुति, देवता लोग गर्भस्तुति करते थे। भगवान जब गर्भ में आए कृष्ण, तभी देवता लोग सब स्तुति करते थे। यहां गर्भस्तुति कहा गया है। कौशल्या के गर्भ में भी भगवान राम आए तो वहां भी देवता लोग स्तुति करते थे। कृष्ण स्तुति क्यों नहीं कहा गया? राम स्तुति, गर्भ स्तुति क्यों कहा गया है? देवता लोग गर्भ की स्तुति क्यों किए? एक टीकाकार ने लिखा है कि गर्भ जो भगवान के पास पहुंचा और कहा कि आपने मुझे क्यों बनाया? गर्भ में आने से सब लोग डरते हैं। 9 महीने गर्भ में रहना पड़ता है तो सब लोग भजन करके गर्भ में आने से बचना चाहते हैं। तो गर्भ ने कहा कि मेरा नाम सुन करके सब लोग डरते हैं और मेरा कभी भी प्रशंसा नहीं हुआ है, हमेशा हमारी निंदा होती है। गर्भ में इतनी असुविधा है, छोटे जगह में रहना पड़ता है और शीर्षासन करके। गर्भ में गर्भ शिशु का पैर ऊपर होता है और सिर नीचे होता है। जैसे आप लोग शीर्षासन करते हैं और बहुत कम जगह में, वो भी मल मूत्र अनेक प्रकार के अवयव होते हैं, दुर्गंध अपान वायु होती है, अनेक कृमि होते हैं। केवल गोपाल कृष्ण महाराज लेक्चर दे रहे थे तो बोले थे कि वहां ऑल आउट लगाने की भी सुविधा नहीं है। वहां ऐसे कृमि काटते हैं कि ऑल आउट नहीं लगा सकते हैं। गर्भ में कभी करवट या आराम चेयर में नहीं बैठ सकते हैं या मेनू बनाकर ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि ये आज ये हमें मिलना चाहिए, आज बहुत गर्मी है लस्सी मिलना चाहिए। नहीं, जो माँ खाती है वही रस जो है मिलता है। माँ कभी खट्टा मीठा तीखा कड़वा खाती है तो शिशु को बहुत पीड़ा होता है। तो गर्भ में बहुत दुख है। जन्म मृत्यु और गर्भ के बीच में इतना दुख है कि जब जन्म होता है तो 1000 भिक्षु के दंश के बराबर पीड़ा होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत दुख होता है। और गर्भ में तो 9 महीना दुख होता है। 9 महीने तक व्यक्ति इतना लंबा शीर्षासन करता है। 9 महीने का शीर्षासन करके हम लोग आए हैं। इतना बड़ा रामदेव भी, उनका भी योग फेल हो जाएगा। 9 महीना वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 9 महीना माँ के गर्भ में हम लोग योगासन करके आए हैं। और सबसे बड़ा योगा क्या है? अब माँ के गर्भ में हम वचन देकर आए कि अब आपका भजन करेंगे। हमारे यहाँ गाना लोग गाते हैं कि माता के गर्भ में रहला बिनती हरि से कैला। माँ के गर्भ में हम लोग वचन देते हैं कि अब आपका हम भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए बार बार गर्भ में जाना पड़ता है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। जठराग्नि पेट में, माँ के पेट में जठराग्नि में बार बार शयन करना पड़ता है। इससे उपरत होने के लिए भगवान ने उपाय भी बताया है। तो गर्भ में भगवान से कंप्लेन किया तो भगवान कहे कि चलो अभी मैं ही गर्भ में आऊंगा तो तुम्हारी स्तुति होगी, हमारी स्तुति नहीं होगी, गर्भ स्तुति। इसलिए सारे देवता लोग गर्भ की स्तुति किए। कंस के कारागार में सारे देवता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुवंती सारे देवता लोग गर्भ स्तुति करते थे। तो अयोध्या में भी हर रोज देवता लोग आकर स्तुति करते थे और भगवान के अनेक लीलाओं का दर्शन करते थे। भगवान प्रकट लीला करें तो सारे देवता आकर के दर्शन करते थे। तो भगवान की बाल लीलाएं भी बहुत मनोहर है, बहुत मनोरम है। बाल लीला के बाद फिर एक कालांतर में विश्वामित्र जी आए अयोध्या में। बक्सर में विश्वा मुनि यज्ञ करते थे और यज्ञ में अनेक असुर लोग उनका यज्ञ भंग कर देते थे। विश्वामित्र बहुत प्रभावशाली थे तो जानते थे कि जो दशरथ नंदन श्री राम है वो स्वयं भगवान है। तो भगवान का दर्शन प्राप्त के लिए, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान की लोक रमणीय लीलाओं को दिग्दर्शन करने के विश्वामित्र जी आए और कहे दशरथ से कि तुम्हारा जो पुत्र है वो कोई सामान्य नहीं है, ये बहुत बड़ा काम करने वाला है और मुझे दे दो, मैं बक्सर में इनको ले जाकर अपना यज्ञ संपन्न करना चाहता हूं। तो दशरथ जी कहे कि हमें बहुत समय के बाद पुत्र हुए हैं और वो भी राम तो हमारे प्राण हैं, राम को मत मांगिए और दूसरे पुत्रों को आप मांगिए हम दे देंगे लेकिन राम को नहीं दे सकते, राम के बिना हम नहीं रह सकते हैं। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती है वैसे राम के बिना नहीं रह सकते। तो हमारे यहां लोग कहते हैं कि मांगी मुनि जी रहुआ मर्जी के धन लेकिन अखिया के मोर पुत्र जन मांगी, आप मर्जी से जो भी मांगना है मांग लीजिए लेकिन हमारे नेत्र की पुत्री को मत मांगिए। दशरथ जी कहे विश्वामित्र कहे कि देखो मुझे राम से ही काम है, राम के बिना हमें आराम नहीं है, राम नहीं तो आराम भी नहीं है। जिसके जीभ में राम नहीं है तो उसको आराम भी नहीं है। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहेंगे तो आराम मिल सकता है। इसलिए राम राम कहजे जमुहाही तिनहिं पाप पुंज समुहाही, जो जमहाई में भी राम राम कहता है तो उसको पाप नहीं स्पर्श करता है। राम जो है त्रिभुवन के पाप को दूर करने के लिए आए हैं, पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आए हैं। विश्वामित्र जी कहे कि राम नहीं, अगर राम को नहीं देंगे तो फिर मेरा काम नहीं बनेगा। एक महात्मा थे अयोध्या से आए थे तो कहे कि बोलो सीताराम, सीताराम बन गया कैसे बोलते थे कि बोलो सीताराम अब बन जाएगा काम, ऐसे बोलते थे सीताराम कहो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ गए अंततः और बक्सर में यज्ञ संपन्न करके फिर जनकपुर में जाते हैं जहां जनक जी स्वयंवर रचते हैं। स्वयंवर में धनुष का धनुष यज्ञ, जो धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह जनक की पुत्री से होगा। तो भगवान जब जनकपुर में गए तो स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए थे, रावण बाणासुर बड़े बड़े राजा आए थे लेकिन कोई धनुष को हिला नहीं पाया, कोई धनुष तोड़ना तो दूर कोई हिला भी नहीं पाया। सारे राजा लोग पराजित हो गए, कोई धनुष हिला नहीं पाया। अंत जनक जी कहे कि अगर मैं यह जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं ऐसा प्रतिज्ञा ही नहीं करता, वीर बहिन वीर विहीन मही में जानी। तो लक्ष्मण जी कहे कि जनक जी ऐसा मत कहिए, अगर भगवान और गुरु विश्वामित्र की आज्ञा है तो ऐसी धनुष को तो मैं बचपन में कितना तोड़ दिया हूं। गुरु और भाई राम की, अगर राम का आदेश होता तो मैं धनुष कभी का तोड़ दिया होता, लेकिन मर्यादा के चलते मैं नहीं तोड़ रहा हूं। तो लक्ष्मण जी अपने भाई राम से कहे कि भैया आप धनुष को तोड़िए, विलंब मत कीजिए, अब बहुत हो गया है, सभी नगर निवासी बहुत दुखी हैं। अगर धनुष नहीं टूटेगा तो जनक का ताप और बढ़ेगा और साथ में जनक नंदनी सीता जी भी व्यग्र हैं, रानियां भी व्यग्र हैं। आपस में रानियां वार्तालाप करती थीं कि जनक बहुत मूर्ख है, ऐसा क्यों प्रतिज्ञा किया, ये जो दो भाई आए हैं अयोध्या से, राम और लक्ष्मण इतने सुंदर हैं, हमारे नेत्र को सफल कर दिए हैं, इनसे प्रतिज्ञा तोड़कर विवाह कर देना चाहिए जनक को, लेकिन जनक बहुत मूर्ख है, ऐसा प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकता है। तो एक सखी ने कहा कि देखो, मैंने सुना है कि ये बक्सर में बड़े बड़े असुरों का वध किए हैं, देखने में भले छोटे हैं इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कि धनुष अवश्य तोड़ेंगे। एक सखी कहती नहीं, मुझे संशय होता है ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, शिव का धनुष बहुत प्रचंड है, बहुत कठोर है, ये बहुत कोमल है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघुगनीय नरानी। जो तेजवंत होते हैं उनको छोटे में गणना नहीं की जानी चाहिए, जैसे हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। सूर्य देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब पूर्व क्षितिज पर उदय होता है तो अंधकार को दूर कर देता है। अगस्त मुनि घड़े से जन्म लिए थे लेकिन समुद्र को पी गए थे। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोखे सुजस सकल संसारा। अगस्त मुनि को कुंभज कहा जाता है, घड़े से जन्म लिए थे लेकिन समुद्र को ही पी गए थे। उसी तरह सूर्य भले देखने में छोटा प्रतीत होता है, लेकिन जब उगता है तो अंधकार को दूर कर देता है। उसी तरह ये देखने में भले छोटे हैं, लेकिन ये इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, ये धनुष को तोड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है, एक सखी कहती है। जब लक्ष्मण जी कहे कि भैया आप धनुष तोड़िए, अब विलंब मत कीजिए, सारा जनकपुर के नर नारी शोक के सागर में डूब रहे हैं, इनको डूबने से आप बचाइए, आप एक जहाज की तरह हैं, सारे नगर निवासियों का शोक दूर कीजिए। तब भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि श्री राम तो गुरु के आदेश प्राप्त करके, गुरु को का आशीर्वाद लेकर के, जैसे नीलगिरी पर्वत पर सूर्य उदीयमान होता है प्रातःकालीन, उसी तरह नीलाम्बुज, भगवान श्री राम नील अम्बुज की तरह है, नीलाम्बुज श्यामलको मलांगम, उनका अंग बहुत कोमल है, कोमलांगम कोमल अंग, और नील कमल की तरह है, नीलाम्बुज श्यामलको मलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासायक चारु चापम। जब अपने हाथों में तीर धनुष धारण करते हैं असुरों का वध करने के लिए, नील मानो नीलगिरी पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य जब उदय होता है तो कमल खिल जाता है। जो धार्मिक राजा थे वो कमल की तरह खिल गए, और जो स्वाभिमानी राजा कुमुदिनी की तरह मुरझा गए। कुमुदिनी चंद्रमा में खिलता है, एक कुमुद होता है वो रात्रि में चंद्रमा के किरणों से खिलता है, और कमल जो है सूर्य के प्रकाश में खिलता है। तो जो भक्त राजा थे वो भगवान राम को मंच पर देख करके बहुत खुशी हुए, और जैसे मंच पर चढ़े तो स्पर्श करते ही धनुष टूट गया। किसी ने नहीं देखा कि धनुष कब उठाए, कब प्रतंचा चढ़ाए, लेत चढ़ावत खैचत खाड़े काहुन लखा देख सब ठाड़े, कोई देखा ही नहीं। धनुष कब उठाए, कब उसके डोरी को खींचे, मानो स्पर्श करने से ही धनुष टूट गया। धनुष टूटा तो बहुत भीषण शब्द हुआ, भयानक शब्द हुआ। धनुष टूटते ही देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे, शंख बजाने लगे, मंगल ध्वनि करने लगे, विवाह का मंगल गीत होने लगा। विवाह का गीत होता है ना, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, वेद मंत्रों से भगवान राम को आशीर्वाद देने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, शादी में बाजे वाले आते हैं, नाचने वाले आते हैं, पहले नाचने वाले बुलाए जाए, अब तो घर वाले ही नाचते हैं। पहले नाचने वाले जो काम करते थे, अब सब घर वाले ही नाचने लगते हैं। नाचने बजाने वालों को हायर करके लाना पड़ता था, अब बिना हायर किए ही नाचने बजाने वाले मिल जाते हैं। तो भगवान राम का बराती भी, बड़े देवता लोग सब अप्सराएं गा नृत्य कर रही थी, गंधर्व लोग गा रहे थे, बहुत सुंदर दिव्य माहौल हो गया था। और जयमाल सीता जी ने राम के गले में डाल दिया, तो भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हो गया। चारों भाइयों का बाद में विवाह हुआ, और भी तीन भाइयों का विवाह हुआ, सीता, उर्मिला, सुकृति और मांडवी, ना चार चार जनक की कन्याएं थी। तो चारों का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद अयोध्या में आए, तो कुछ समय के बाद देवताओं ने सरस्वती को कहा कि भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है, और भगवान राम राजा बन जाएंगे तो वन में नहीं जाएंगे, वन में नहीं जाएंगे तो असुरों का वध नहीं होगा। तो भगवान के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, उसी समय देवताओं के द्वारा सरस्वती ने मंथरा का ब्रेनवास कर दिया, और मंथरा ने कैकई का ब्रेनवास कर दिया, कैकई ने राजा दशरथ को प्रताड़ित कर दिया कि नहीं, राम राजा नहीं होंगे, भरत राजा होंगे, भरत को राज्य चाहिए और राम को वन में जाना चाहिए 14 वर्ष। जो भी 14 वर्ष राज्य से बाहर रहता है तो राज्य से वंचित हो जाता है। कैकई ने बड़े युक्ति से 14 वर्ष वनवास मांगा था। 14 वर्ष राज्य से बाहर रहने पर ऐसे ही राज्य पर उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा। आदव राम तपो बना दिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंका पुरीदाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन एतद्धि रामायणम। संक्षेप में इसको रामायण बोलते हैं। आदव राम तपो बना दिगमनम, जब कैकई ने ऐसा कहा तो भगवान राम वन गमन किए तापस वेश में, और चित्रकूट में रहे। चित्रकूट से पहले निषाद राज से मित्रता किए, केवट के द्वारा नाव के द्वारा गंगा पार किए, चित्रकूट में बहुत समय निवास किए। चित्रकूट से फिर बढ़े आगे तो पंचवटी में आए, जहां मामा मारिच रहते थे। तो मां आगे चल करके पंचवटी में एक दिन सुपनखा भगवान राम के सौंदर्य को देखकर लुप्त हो गई और कही कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अब तक मैं अविवाहित हूं, लेकिन आपको देख करके अब मुझे विवाह करने का मन हुआ है। तो भगवान राम कहे कि मेरा विवाह हो चुका है, साथ में स्त्री भी है, मेरा भाई अविवाहित है। भगवान राम झूठ बोले, क्योंकि सुपनखा ने भी झूठ बोला था, उसका बहुत विवाह हुआ था, कई डाइवोर्स हुआ था। उसने झूठ बोली थी कि मैं अभी तक अविवाहित हूं, मेरे मन पसंद कोई दुल्हा नहीं मिला था, लेकिन आपको देख करके कुछ कुछ मन बना है, वो भी पूरा नहीं। आपको देखकर थोड़ा मन मुझे हुआ है कि मैं अब विवाह कर लेनी चाहिए, तो मैं अविवाहित हूं। भगवान कहे कि मेरा भाई भी अविवाहित है, अब उसके पास जाइए। तो सुपनखा लक्ष्मण के पास जाती है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हो, वो राजा हैं, मैं उनका दास हूं, राजा से शादी करोगी तो रानी बनोगी और मुझसे शादी करोगी तो दासी बनोगी, तो दासी क्यों बनना चाहती हो, जाओ उनसे विवाह करो। फिर जाती है, इस तरह से आने जाने का क्रम जारी रहा। तो सुपर्णखा ने समझा कि इस बीच में जो बाधा है स्त्री है, ये सीता जो है अगर इसको मैं मार दूंगी तो हमारा काम बन जाएगा। तो भगवान सुपर्णखा के मनोभाव को समझ करके लक्ष्मण को इशारा कर दिए कि इसका नाक कान काट लो। नाक कान लक्ष्मण जी काट लिए, तो नाक कान के बिना भयंकर अपने वास्तविक रूप में हो गई, मायावी रूप धारण की थी। असुर लोग भी बहुत माया जानते हैं, बहुत सीधी जानते हैं, रूप बना सकते हैं। जैसे पुतना सुंदर रूप बना करके गोकुल में गई थी लक्ष्मी जैसा, हाथ में कमल लेकर के। पुतना जब गोकुल में नंद भवन में गई तो यशोदा जी ने समझा कि साक्षात लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, वैसे सुपर्णखा रूप बनाई थी, लेकिन जब नाक कान कटा तो अपने वास्तविक रूप में आ गई, भयंकर रूप में आ गई। बाद में यह खबर जो है खरदूषण को लगा तो 14,000 सेना लेकर आक्रमण किए खरदूषण। खरदूषण बड़े बलशाली थे, खर और दूषण। खर माने गदहा होता है और दूषण माने जो प्रदूषित करता हो वातावरण को, जो वातावरण को दूषित कर दे वो दूषण है। तो दोनों गधे थे, गधा की आकृति में थे। तो भगवान राम समझ गए कि सेना, विशाल सेना लेकर आ रहे थे, आकाश धूल से भर गया था। भगवान राम सीता से कहे कि तुम अग्नि में निवास करो, मैं अपना मिशन पूरा करना चाहता हूं। भगवान का मिशन क्या है? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। भगवान मुझे असुरों का विनाश जब तक नहीं करना, न कर लूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। असली सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिए और माया सीता जो है, रावण माया सीता को ले गया था और माया रूपी सीता माया मृग पर लुब्ध हुई थी। मारिच भी माया मृग का रूप लिया था, असली सीता माया मृग पर नहीं लुब्ध हो सकती हैं। असंभवम है मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। यह संभव नहीं हो सकता है कि राम माया मृग पर लुब्ध हो। नहीं, भगवान भी माया लीला कर रहे थे, नर लीला। प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि भगवान भी कभी कभी मनुष्य की भांति कर्म करते हैं और इस तरह अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत महिमा में कार्यकलाप करते हैं। जब उनको अपनी लीलाओं का आनंद लेना होता है तो वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य की भांति कर्म करते हैं, एकदम सामान्य मनुष्य की तरह। तो मारिच रावण के कहने से रावण खरदूषण का जब वध हो जाता है तो सुपर्णखा रावण के पास जाती है, कहती कि भैया तुम्हारे रहते हमारी यह स्थिति हो गई है, खरदूषण का भी वध हो चुका है। तो रावण ने कहा कि कौन ऐसा हिम्मत किया है जो तुम्हारा यह दुर्दशा किया है? सुपर्णखा कहती कि एक तपस्वी आया है, उसके साथ में एक बहुत सुंदर स्त्री है, वो स्त्री को मैं तुम्हारे लिए फुसला रही थी, हमारा नाक कान काट दिया। वो वास्तविक नहीं बताई कि मैं उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था। वो कही कि स्त्री इतनी सुंदर है कि मैं तुम्हारे लिए उसको बहका कर ला रही थी, लेकिन वो मेरा यह दशा कर दिया। तो रावण कहा कि खरदूषण का भी वध हो गया, वो तो बलवान, हमारे समान ही वो बलवान थे। रावण को आभास हो गया कि खरदूषण को कोई और वध नहीं कर सकता है, बिना भगवान के खरदूषण को कोई मार ही नहीं सकता है। तो लगता है पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भू भार वतार आय, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रभु का अवतार हो चुका है। रावण अनुमान लगाया ऐसा और कहा कि अगर भगवान होंगे तो उनसे बैर करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, अगर कोई साधारण होंगे तो उनको बंदी बना लूंगा। तो रावण ने कहा कि हमारे लिए दोनों तरफ फायदा है, अगर भगवान होंगे तो पूरी आसुरी सेना उनके हाथों मर करके मुक्त हो जाएगी, और नहीं मनुष्य होंगे तो उनको बंदी बनाकर उनकी स्त्री को ले आऊंगा। तो रावण इस तरह से मरीज के पास जाता है। पंचवटी में राम निवास कर रहे थे, नासिक में। नासिक के नाम हुआ कि सुपनखा का नाक कटा, इसलिए नासिक। नासिक माने नाक होता है। तो पंचवटी में मामा मरीच जो है के पास रावण ने कहा कि आपको ये काम करना है, माया मृग बनना है। अगर भगवान होंगे तो उनकी परीक्षा भी हो जाएगी, सामान्य मनुष्य होंगे तो नहीं समझ पाए कि ये मायावी मृग है। तो उस मृग का जब माया मृग बना मारीच, तो भगवान राम उसका वध कर दिए। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलभे मृगाय। सोने का मृग कभी जन्म नहीं लेता है, भगवान राम भी जानते थे, लेकिन लीला का विस्तार करने के लिए वो माया मृग के पीछे भाग रहे थे। जो मायापति भगवान है, माया के मृग के पीछे भाग रहे थे। इस बीच में रावण जो है माया सीता को ले जाता है। रास्ते में जटायु से युद्ध होता है, जटायु मरणम। फिर भगवान श्री राम सीता का अन्वेषण करते हुए जटायु से मिलते हैं, जटायु सारी बात बताते हैं। फिर सुग्रीव से मित्रता होती है, सुग्रीव संभाषणम। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते थे, तो भगवान श्री राम सबरी से मुलाकात करके, सबरी ने कहा कि आप पंपा सरोवर जाइए जहां सुग्रीव रहते हैं, उनसे मित्रता कीजिए, वो आपका काम बनाएंगे। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण तापस वेश में आ रहे थे, तो हनुमान जी से सुग्रीव जी कहे कि ये दो क्षत्रिय वेश में आ रहे हैं, पता लगाइए कौन है। बाली के अगर भेजे होंगे तो मैं भाग जाऊंगा। बाली के भय से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। ऋषिमुख पर्वत पर मतंग मुनि के हिसाब से बाली वहां नहीं जाता था। बाली एक बार ऋषिमुख पर्वत पर शिकार करने गया था, आखेट करने, तो बहुत सारे पशुओं का वध कर दिया था। तो मतंग मुनि के आश्रम में खून के धब्बे पड़े हुए थे, तो मतंग मुनि ने साप दे दिया था बाली को कि दोबारा अगर इस पर्वत पर आओगे तो जलकर भस्म हो जाओगे। तो मुनि के साप से बाली उस पर्वत पर नहीं जाता था। फिर भी सुग्रीव को भय रहता था कि उसके अनुसर कोई न आ जाए, और वो नहीं आ सकता है, लेकिन कोई मिलिट्री मैन को भेज सकता है, कोई गुप्तचर भेज सकता है। तो राम लक्ष्मण को धनुष बाण लिए देख करके सुग्रीव के मन में संशय हुआ। हनुमान जी से कहे कि जाकर गोपनीय ढंग से पता लगाइए कौन दो वीर हैं, अगर बाली के भेजे होंगे तो मुझे इशारा करके बता दीजिएगा, मैं भाग जाऊंगा। इतना भयभीत रहते थे सुग्रीव जी। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके, ब्रह्मचारी का रूप बना कर गए और कहे कि आप कौन हैं? कोतुम श्यामल गौर शरीरा, और श्याम गौर कौन हैं आप, और वन में क्यों घूम रहे हैं, और धनुष बाण लिए हैं, क्या बात है, किसी को मारने के लिए जा रहे हैं क्या? तो भगवान कहे कि हम दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं, और पिता का वचन मानकर हम वन में आए हैं। यहां निशाचरों ने मेरी पत्नी को हर लिया है, उसका हम पता कर रहे हैं। तो हनुमान जी समझ गए कि प्रभु श्री राम है, तो उनके चरण में गिर गए और वंदना किए कि प्रभु मैं तो बानर जाति का हूं, कामी हूं, क्रोधी हूं, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, मैं तो अज्ञ हूं, मूर्ख हूं, मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, आप तो बिल्कुल अनजाने व्यक्ति की तरह हमारा भी परिचय पूछ रहे। जब हनुमान जी पूछे कि आप कौन हैं, कस्त्वम, आप क्यों वन में घूम रहे हैं, तो भगवान भी पूछे कि अपना परिचय देने के बाद बोले कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। हनुमान जी भी उसी तरह पूछ रहे थे जैसे कुछ जानते ना हो। तब हनुमान जी कहे कि मैं तो मूर्ख हूँ अज्ञानी हूँ कि आपको नहीं पहचान पाया, आप तो सब जानते हैं। तो हनुमान जी कहे कि प्रभु आपका एक दास इस पर्वत पर रहता है, उसे आप मित्रता कीजिए। तो हनुमान जी राम और लक्ष्मण को कंधे पर चढ़ा लिए कि सुग्रीव के मन का भय दूर हो जाए कि ये कोई हमारा शुभ चिंतक है, कोई वेल विशर है, तभी कंधे पर चढ़ाकर ला रहे हैं। तो हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पर चढ़ा करके ले आए और सुग्रीव से मित्रता कराए। सुग्रीव संभाषणम, तो सुग्रीव जी से समाचार हुआ कि यहाँ जंगल में असुरों ने मेरी स्त्री को हर लिया। तो सुग्रीव भी कहे कि हमारी स्त्री को भी बाली ने ले लिया है। जवन तोहार गति तवन हमार गति, जो आपकी स्थिति है वो हमारी भी स्त्री है, स्थिति है। आपकी भी स्त्री को रावण ने ले लिया है और हमारी स्त्री को बाली ने ले लिया है। हम दोनों की मित्रता समान है, अब मित्रता समानता में ही होता है। अभी स्त्री के विरह में है और मैं भी स्त्री के विरह में हूँ। आपका भी राजपाठ आपकी माँ ने हड़प लिया है, आपका भाई आपका राज ले लिया है और हमारा भी राज हमारा भाई ले लिया है, मुझे राज से बाहर निकाल दिया है। और आपका आपको भी आपकी माँ ने आपके राज से वन में भेज दिया है। हमारे लोग गाना गाते हैं कि जंगल के कोलभिल की स्त्रियां कह रही थी कि आपको कौन जंगल में पठाया है, वो माता पिता क्या मूर्ख हैं, क्या पागल हैं क्या कि ऐसे सुंदर जोड़ी को वन में पठाया है। माई कसाई भैली बाबू भैले बाबूर, काहे पठाई दहले, आपको वन में क्यों पठा दिए, इतने आप सुंदर हैं, इतने कोमल हैं। हे बाबू रुकिदा दू चार दिन आऊर, माई कसाई भैली बाबू भैले बाऊर, आ कई तो हैं देई दहले खोइछा में चाउर। जब लड़की का विदाई होता है तो उसके आंचल में चावल है, सुपारी है, पान पत्ता है, हल्दी है, पैसा है, विदाई में दिया जाता है। तो आपको कौन ऐसा विदाई किया है, कौन भेज दिया है, क्या वो माँ कसाई है और पिता क्या बाउर हो गया, पागल हो गया है, आपको वन में क्यों भेज दिया है। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि आपका भाई भरत आपका राज हड़प लिया है मजाक में, विनोद में, और माँ ने आपको जंगल में पठा दिया है। अब मेरा भी वही स्थिति है, जो आपकी स्थिति वही हमारी स्थिति भी है, तो मित्रता हो जाती है। तो भगवान श्री राम कहे कि मैं आपका राज स्त्री वापस लौटाऊंगा, बाली का वध करूंगा। सुग्रीव भी कहे कि मैं भी आपकी सहायता करूंगा, सीता का पता लगाऊंगा। तो सुग्रीव जी वहीं पर कहे कि एक बार मैं मंत्रणा कर रहा था, सुग्रीव बंदरों के राजा हैं, तो एक बार देखा विमान से एक स्त्री जा रही थी बिलाप करते हुए, तो उसने कुछ आभूषण गिराया था, तो आभूषण दिखाए सुग्रीव जी। तो भगवान श्री राम पहचान गए और कहे कि ये सीता का ही है। तो लक्ष्मण जी से भी कहे कि देखो ये सीते के आभूषण हैं, पहचान रहे हो। तो लक्ष्मण जी कहे कि मैं तो एक ही आभूषण पहचान रहा हूँ, नूपुर, जो सीता के पैर में नूपुर है वो पहचान रहा हूँ, बाकी और नहीं पहचान रहा हूँ। क्यों? कि लक्ष्मण जी सीता के केवल चरण में देखते थे, ऊपर नहीं देखे थे, केवल चरण वंदना करते थे, माँ की तरह केवल चरणों में देखते थे, ऊपर देखे ही नहीं थे कि क्या कुंडल है, क्या नाक में है, क्या गले में है, वो कभी नहीं देखे थे, सीता के केवल चरणों में ही देखते थे। तो बोले भैया राम, मैं चरण में जो नूपुर है वही पहचान रहा हूं। फिर सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम, बाली का वध किए भगवान। समुद्र तरणम, फिर समुद्र पर पुल का निर्माण किए। भगवान समुद्र पर पुल का निर्माण चार दिन में कर दिए, 400 कोस का पुल जो है चार दिन में बना दिए, और बंदर भालू की सहायता से। न तो कोई भगवान रामचंद्र के तुल्य है न उनसे बढ़कर, अतः उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने में बानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी, वो समर्थ थे सब कुछ कर, लेकिन बानरों से सहायता लिए और बानरों की सहायता से समुद्र पर पुल का निर्माण किए। बिना समुद्र को ऐसे भी लांग सकते थे, लेकिन समुद्र के कहने से समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किए। 3 दिन तक समुद्र के किनारे भगवान बैठे रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहे मुझे मार्ग दे दो जाने के लिए। वो समुद्र कुछ सुना नहीं, तब भगवान श्री राम थोड़ा सा क्रोध किए और क्रोध भरी दृष्टि से समुद्र को देखे तो समुद्र में मानो समुद्र का पानी उबलने लगा। जिनके नेत्र भ्रकुट के जिनके नेत्र के भ्रकुटी के संचलन से प्रलय हो जाता है, वही भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो देख दिए तो समुद्र त्राही माम करके मूर्तवत आ गया। और समुद्र ने कहा कि समुद्र अब मर्यादा पुरुषोत्तम है, और समुद्र की मर्यादा क्या है कि समुद्र कभी सूखता नहीं है, तो मेरे ऊपर आप पुल का निर्माण कीजिए। समुद्र ने कहा अब मर्यादा पुरुषोत्तम होकर हमारी मर्यादा पर अगर आप विचार नहीं करेंगे तो आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे, आप तो सबकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए आए हैं। तो समुद्र ने कहा कि हमारी मर्यादा समाप्त हो जाएगी तो आप मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे कहलाएंगे, मैं अगर सूख जाऊंगा तो समुद्र का कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो भगवान समुद्र पर विशाल पुल का निर्माण किए। समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, हनुमान जी लंका को जला दिए। पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन ए तद्धि रामायणम, इतना ही रामायण संक्षेप में हो गया। तो रावण का वध किए भगवान, रावण के 10 सिर 20 भुजाएं थी, बहुत शक्तिशाली था दशानन। रावण शिव का परम भक्त था और अपना सिर काटकर शिव जी को चढ़ाता था, फूल जैसा, जैसे हम लोग फूल चढ़ाते हैं वैसे वो सिर चढ़ाता था, प्रतिदिन कटार से अपना सिर काट काट करके शिव जी को चढ़ाता था। और शिव जी इतने प्रसन्न होते थे कि ऐसा पुजारी बहुत कम मिलते हैं, कोई फूल चढ़ा सकता है, बेलपत्ती चढ़ा सकता है, लेकिन सिर प्रतिदिन सिर चढ़ाता था और फिर नवीन सिर हो जाता था। रावण के नाभि में अमृत कुंड था, उसके नाभि में अमृत निवास करता था, तो सिर कटने पर फिर नया सिर आ जाता था, तो रोज फूल न खरीद करके सिर ही काटकर चढ़ाता था, विविध प्रकार से पूजा करता था। शिव विरंची पूज ही बहु भांति, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। रावण बहुत उत्तम कुल में जन्म लिया, पुलस्त मुनि का ग्रैंडसन था, पुलस्त मुनि का विश्रवा, विश्रवा का रावण, ऐसे बहुत उत्तम कुल में ब्रह्मा जी के परंपरा में था, ब्रह्मा जी के पुलस्त, पुलस्त के विश्रवा, विश्रवा के रावण, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, नाती मने ग्रैंड सन। आ शिव बिरंच पूज ही बहु भांति, और शिव ब्रह्मा का अनेक प्रकार से पूजा करता था, विविध प्रकार से, ले शिव जी बहुत प्रसन्न होकर उसको बहुत बर दिए थे। तो रावण बहुत बड़ा योद्धा था, रावण चलता था तो मेदिनी कांपने लगती थी, पृथ्वी हिलने लगती थी। रावण के यहां सारे देवता लोग नौकरी करते थे, कुबेर को चीफ अकाउंटेंट बना दिया था, पवन देवता को झाड़ू लगाने का काम दे दिया था कि साफ सफाई करो, इंद्र को पानी भरने का काम, रावण का जो पुत्र मेघनादी इंद्रजीत, इंद्र को भी जीत लिया था। सारे देवता लोग काम करते थे, कोई खाना पकाता था, कोई बर्तन मांजता था, और साधु संत लोगों से भी टैक्स लेता था। साधु संतों से बोलता टैक्स देना है, तो साधु लोग बोलते हमारे पास कुछ है नहीं, कमंडल है क्या हम देंगे, तो ब्लड दो। ब्लड टैक्स में लेता था साधु महात्माओं से, क्योंकि राक्षस लोग खून पीते हैं। आज भी राक्षस लोग गाय का बकरे का खून पीते हैं। राक्षस लोग कत्ल खानों में जो खून होता है, ताजा ताजा खून राक्षस लोग पी जाते हैं। तो राक्षस लोग खून पीते थे, तो जितने ऋषि मुनि थे उनका खून बहुत अच्छा होता है। वेजिटेरियन खाते हैं लोग, स्कंद मूल खाते हैं, तो साधु लोगों का खून बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो खून पसंद करते थे राक्षस लोग पीने के लिए। तो सब साधु लोगों को कम से कम महीने तो 3 महीने या 6 महीने में ब्लड दे सकते हैं ना। आज भी ब्लड बैंक में है कि साल में एक बार ब्लड दे सकते हैं। हम एक बार ब्लड देने गए थे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, तो वहां डॉक्टर बोला आप लोगों का ब्लड बहुत अच्छा होता है आप लोग कोई नशा नहीं करते हैं, मांस नहीं करते हैं, आप लोगों का ब्लड जो है बहुत अच्छा होता है। इसीलिए रावण जो है साधुओं से टैक्स में खून लेता था और साधुओं से भी सेवा करवाता था। साधु लोगों से भी सेवा करना पड़ता था। तो रावण जो है बहुत बलशाली था, लेकिन फिर भी रावण की सारी सेना जो है परास्त हो गई। भगवान राम सारी सेना को मार दिया और अंततः रावण कुंभकर्ण रावण का भाई था कुंभकर्ण। अब विभीषण तो भगवान के पास चले गए थे। कुंभकर्ण माने जिसका कान जो है घड़े की तरह हो, कुंभकर्ण उसका कान जो है बड़ा बड़ा था घड़े की तरह, और 6 महीना सोता था। साल में 1 दिन जगता था वो, 6 महीने सो नहीं, साल में 2 बार जगता था शायद कि 1 दिन जगता। जब जगता था तो बहुत खाता था वो, कितने गधा हाथी घोड़ा सुअर सब खा जाता था, और कई करोड़ घड़े शराब पीता था। उसको सिद्धि प्राप्त थी, सरस्वती ने उसको वरदान दिया था। इतना वो खाता था सब हजम हो जाता था, करोड़ों घड़े मदिरा पीता था सब शरीर में भस्म हो जाता था, भैंसे और गधे खा जाता था बिना पकाए, और सोता था तो 6 महीने सोए रहता था। 6 महीने का साल भर सोता था, 1 दिन जगता था। वो सरस्वती जी से एक बार आशीर्वाद प्राप्त करना चाहा, कहा कि मुझे इंद्रासन चाहिए। कुंभकर्ण भी इतना बलशाली था, बोला मैं इंद्र का आसन में चाहता हूं, वो इंद्र को वहां से हटाइए, मैं वो आसन में बैठना चाहता हूं। तो सरस्वती ने नहीं, ब्रह्मा जी से वर मांगने गया था, ब्रह्मा जी से। तो सरस्वती ने उसके जिह्वा पर सवार होकर के कुछ और मंगवा दिया, इंद्रासन के जगह निद्रासन मांग लिया। निद्र आसन माने निध ही जिसका आसन हो, निध के आसन पर ही जो हमेशा रहे। सरस्वती ने सोचा कि अगर ये हमेशा जगे रहेगा तो सब जीव जंतुओं को खा जाएगा, सबको स्वाहा कर देगा अपने पेट में। 1 दिन जगता था तो पूरे पृथ्वी में डंका बज जाता था 1 दिन में। तो सरस्वती के द्वारा उसको निद्रासन, निद के ही बेड पर रहता था हमेशा, 1 दिन जगता था। तो ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को भी भगवान खेल खेल में मार दिए, सबको मार करके अंत में विभीषण को राज तिलक कर दिए। और समय समाप्त हो चुका है, विभीषण को राज तिलक करके भगवान 14 वर्ष का समय व्यतीत करके पुष्पक विमान से पुनः अयोध्या आते हैं। उधर विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और इनका राज्याभिषेक, भगवान राम का भी राज्याभिषेक भरत जी करते हैं। तो आज विजयादशमी के दिन ही रावण पर भगवान राम विजय प्राप्त किए थे। दशहरा, दस सिरों को जिन्होंने हरण कर दिया सर, दस सिरों को जो काट दिया है, दशहरा रावण को भगवान पराजित किए। रावण किसी से पराजित होने वाला नहीं था, मरने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसके पेट में अमृत अमृत था। भगवान राम के द्वारा ही वो मर सकता, और कोई नहीं मार सकता था। वो जानता था कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, भगवान राम के अलावा कोई मार ही नहीं सकता है, उसको पूर्ण विश्वास था, बर प्राप्त था। इसलिए भगवान राम के हाथों मरा, वो उसका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। श्री रामचंद्र भगवान की, शील प्रभुपाद की।